एकत्र ज्ञानगोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानगोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे जो अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने होती है, फिर भी अनदेखी है जाती है। समंदर का किनारा,
बिल्कुल वो जादुई सी रेखा जहां जमीन और पानी मिलते हैं। और इस सफर पर हमारी साथी है एक बेहद खास किताब, राहेल कार्सन की क्लासिक रचना द एज ऑफ द सी, जो 1955 में छपी थी।
हाँ, 1955। तो शायद कुछ लोग सोचें कि भाई इतनी पुरानी किताब आज क्यों।
सही सवाल है। देखिए, ये सिर्फ जमीन और पानी की रेखा के बारे में नहीं है। ये किताब हमें उस किनारे को एक जीवित, धड़कते हुए, लगातार बदलते और अविश्वसनीय रूप से जटिल इकोसिस्टम के रूप में देखना सिखाती है।
अच्छा, मतलब सिर्फ भूगोल नहीं।
बिल्कुल नहीं, ये हमें प्रकृति की बारीकियों पे ध्यान देना सिखाती है, जीवन के वो अदृश्य धागे, उनको समझना और अपने आसपास की दुनिया के प्रति एक गहरा आश्चर्य, एक विस्मय का भाव, उसे फिर से जगाना सिखाती है।
तो कह सकते हैं कि ये पर्यावरण के प्रति हमारी समझ और सम्मान की पहली सीढ़ी है।
हाँ, कुछ हद तक तो जरूर, ये एक नजरिया देती है और इस सीढ़ी पर हमें ले जाने के लिए राहेल कार्सन से बेहतर गाइड शायद ही कोई होता। उनका जिक्र जरूरी है यहाँ।
हाँ, राहेल कार्सन 1907-1964, वो एक अमेरिकी समुद्री जीव विज्ञानी थी, लेखिका और संरक्षणवादी भी।
जी हाँ, और अक्सर उन्हें वैश्विक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत करने वाली आवाजों में गिना जाता है, खासकर उनकी वो बाद वाली किताब साइलेंट स्प्रिंग।
हाँ, जिसने कीटनाशकों के खतरों पर दुनिया को जगाया था।
बिल्कुल, पर उनकी नींव यहीं से दिखती है।
उनकी पृष्ठभूमि भी तो काफी मजबूत थी, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में मास्टर डिग्री,
और फिर अमेरिकी मत्स्य ब्यूरो में लंबा अनुभव, पहले वैज्ञानिक फिर संपादक भी बनी। लेकिन उनकी असली ताकत, आप कह सकते हैं, सिर्फ अकेडमिक ज्ञान नहीं थी।
हाँ, ये बात तो है।
उनमें वैज्ञानिक सटीकता और काव्यात्मक भाषा का एक अद्भुत संगम था। वो तथ्यों को भावनाओं और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ पिरो सकती थी।
द एज ऑफ द सी की मशहूर सी ट्रिलॉजी की आखिरी किताब थी, है ना?
जी, वो तीनों किताबें दिखाती हैं कि वो समुद्र को कितनी गहराई से जानती थी और महसूस करती थी।
तो ऐसा लगता है कि उनके पास एक तरह की दोहरी दृष्टि थी, एक वैज्ञानिक की पैनी नजर।
हाँ, जो लहरों की ताकत, चट्टानों की कहानी, जीवों के संघर्ष को समझती थी,
और दूसरी एक कवि की आत्मा, जो इस समझ को हम जैसे आम पाठक के लिए आश्चर्य और जुड़ाव के अनुभव में बदल सकती थी।
बिल्कुल सही कहा। उनका अधिकार सिर्फ डिग्री से नहीं, बल्कि समुद्र के साथ उनके निजी गहरे रिश्ते से आता था।
अच्छा, तो अब जरा किताब के दिल पर आते हैं। द एज ऑफ द सी का सार क्या है?
देखिए, असल में ये अमेरिका के अटलांटिक तट के इकोसिस्टम के लिए एक गाइड है, लेकिन ये किसी सूखी गाइडबुक जैसी बिल्कुल नहीं है।
हाँ, वो तो आपकी बात से लग रहा है।
इसका असली मकसद है अंतर्ज्वारीय क्षेत्र, मतलब वो हिस्सा जो दिन में दो बार ज्वार के पानी में डूबता है और दो बार भाटे के समय हवा में खुला रहता है, उस छिपी हुई अद्भुत दुनिया को हमारे सामने लाना।
और किताब का केंद्रीय विचार क्या है, मतलब मेन आइडिया?
मेन आइडिया ये है कि ये किनारा जो हमें कभी चट्टानी, कभी रेतीला, कभी कीचड़ भरा, यानी अक्सर खाली या बेजान सा लग सकता है।
हाँ,
वो असल में पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण आवासों में से एक है। यहाँ जीवन हर पल संघर्ष करता है, अनुकूलन करता है और पनपता है
हर पल।
हाँ, कार्सन दिखाती हैं कि कैसे हर छोटा बड़ा जीव, चाहे वो एक नन्ना घोंगा हो या समुद्री शैवाल, अपने भौतिक माहौल और दूसरे जीवों से एक जटिल जाल में बुना हुआ है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं।
ये दिलचस्प है। तो ये किताब हमें यात्रा पे ले जाती है?
बिल्कुल। पहले वो बड़ी शक्तिशाली ताकतों की बात करती हैं, लहरें, ज्वार भाटा, चट्टानों का इतिहास। फिर धीरे धीरे वो लेंस को जूम इन करती हैं।
अच्छा।
और हमें उन छोटे छोटे जीवों के जीवन, उनकी रणनीतियों, उनके संघर्षों को दिखाती हैं।
तो ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं करती?
नहीं, ये तीन मुख्य तरह की तटरेखाओं का सफर करती है। न्यू इंग्लैंड के चट्टानी किनारों से लेकर फ्लोरिडा के प्रवाल यानी कोरल और मैंग्रोव किनारों तक।
और वो जोनेशन वाली बात?
हाँ, साथ ही ये किनारे पर ऊपर से नीचे तक जीवन के अलग अलग क्षेत्रों यानी जोनेशन के पैटर्न को भी समझाती है। ये बहुत जरूरी है।
इसमें कई परतें खोलती हैं फिर तो। समुद्री जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, भूविज्ञान भी,
सब कुछ। जीवन चक्र, खाने की आदतें, बचने के तरीके, शिकारी शिकार के रिश्ते, सहजीवन, जगह के लिए होड़, कैसे चट्टान या रेत जीवन तय करते हैं और जीव कैसे मुश्किल हालात में ढल जाते हैं, यानी अनुकूलन।
लेकिन ये सब वैज्ञानिक बातें उबाऊ नहीं लगती?
बिल्कुल नहीं। यही तो कार्सन का जादू है। वो इन्हें सिर्फ तथ्यों की तरह नहीं परोसती, वो इन्हें एक दार्शनिक नजरिए और साहित्यिक सुंदरता के साथ बुनती हैं।
तो ये किताब एक तरह का निमंत्रण है?
हाँ, ये हमें कहती है, रुको, झुको, ध्यान से देखो, एक पत्थर पलट कर देखो, उसके नीचे क्या छिपा है, एक छोटे से टाइड पूल के किनारे धीरज से बैठो और देखो कि वहाँ क्या चल रहा है।
उस महाकाव्य नाटक को पहचानने का आह्वान जो अक्सर हमारे पैरों तले घट रहा होता है।
बिल्कुल, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। ये सचमुच दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती है।
चलिए तो अब इस किनारे की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले वो बड़ी तस्वीर, ये किनारा स्थिर नहीं है।
बिल्कुल नहीं, कार्सन इसे निरंतर बदलाव की जगह कहती है, जहां प्रकृति की मौलिक शक्तियां काम करती हैं, लहरों की जबरदस्त ताकत और ज्वार भाटे का रोज का अनुशासन, चांद और सूरज से जुड़ा हुआ, यही यहाँ जीवन की लय बनाते हैं।
और इस उथल पुथल में भी एक व्यवस्था है, वो जोनेशन वाली बात।
जी हाँ, क्षेत्रीकरण, मतलब जीव जंतु बेतरतीब ढंग से नहीं फैले होते, वो अलग अलग पट्टियों या जोन में पाए जाते हैं।
और ये किस पर निर्भर करता है?
इस पर कि वो हवा में कितनी देर रह सकते हैं, तापमान के उतार चढ़ाव को कितना झेल सकते हैं और लहरों की मार कितनी सह सकते हैं। ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है, अब बात करते हैं चट्टानी किनारे की, जैसे न्यू इंग्लैंड। सख्त जमीन मतलब चिपकने की जगह।
हाँ, और नतीजा, जगह के लिए जबरदस्त होड़। कह सकते हैं ये रियल एस्टेट का सबसे मुश्किल बाजार है।
हाँ, और यहाँ जोनेशन साफ दिखता होगा फिर तो?
बहुत साफ, सबसे ऊपर जहाँ सिर्फ लहरों की छींटे पहुँचती हैं, स्प्लैश जोन।
यहाँ जीना मुश्किल होगा?
बहुत, सिर्फ कुछ बेहद सख्त जान जीव ही टिक पाते हैं, जैसे लाइकेन, वो कवक और शैवाल का मिला जुला रूप।
हाँ, सहजीवन
और
छोटे पेरीविंकल घोंगे, वो अपने खोल के मुंह पर एक ढक्कन जैसा होता है ओपेरक्यूलम, उसे लगाकर सूखने से बचते हैं। अच्छा, उसके नीचे?
उसके नीचे उच्च ज्वार क्षेत्र, हाई टाइड जोन, जहां ज्वार का पानी रोज पहुंचता है। यहां अक्सर सफेद रंग के बार्नकल का कब्जा होता है।
बार्नकल? इनका जीवन चक्र तो कमाल का सुना है।
हाँ, लार्वा के तौर पर ये पानी में आजाद तैरते हैं, फिर किसी चट्टान पर अपना सिर चिपका लेते हैं।
सिर? वाकई?
हाँ, सिर, और फिर अपने चारों ओर सीमेंट जैसा खोल बना लेते हैं और ये पानी से खाना छानकर खाते हैं।
और जगह के लिए मारामारी?
बहुत ज्यादा, एक दूसरे के ऊपर उगाते हैं।
अजीब है। अच्छा, फिर आता है मध्य ज्वार क्षेत्र, मिड टाइड जोन, ये ज्यादातर पानी में डूबा रहता होगा।
हाँ, यहाँ विविधता बहुत बढ़ जाती है। यहाँ आपको रॉकवीड जैसे भूरे समुद्री शैवाल मिलेंगे,
जो छोटे जीवों को पनाह देते हैं।
बिल्कुल, छांव और नमी, और नीली मसल्स दिखेंगी जो बेहद मजबूत धागों से चट्टानों पर चिपकी रहती हैं।
वो बाइसल धागे?
हाँ, एक तरह का प्रोटीन गोंद,
सुपर ग्लू।
हाँ, कह सकते हैं। यहाँ शिकारी भी घूमते हैं, डॉग वेल्क, घोंघा, केकड़े। कार्सन इसे ठीक ही एक हलचल भरा शहर कहती हैं।
और सबसे नीचे वो निम्न ज्वार क्षेत्र और टाइड पूल।
हाँ, जो सिर्फ सबसे कम ज्वार के समय ही पानी से बाहर आता है, स्प्रिंग टाइड के वक्त। ये जगह तो जैसे समुद्र का एक छोटा सा नमूना है, सबसे ज्यादा रंगीन और जीवन से भरपूर।
टाइड पूल का जादू, प्राकृतिक एक्वेरियम जैसा।
बिल्कुल, समुद्री एनिमन जो फूलों जैसे दिखते हैं पर शिकारी होते हैं, रंग बिरंगी समुद्री तारे, कांटेदार समुद्री ऑर्चिन और बड़े समुद्री शैवाल यानी केल्प के जंगल।
वाह, अब चट्टानी किनारे से रेतीले किनारे की तरफ चलते हैं, जैसे मध्य अटलांटिक तट। ये तो बिल्कुल अलग दुनिया होगी।
एकदम अलग, लगातार हिलती डुलती बदलती हुई रेत। यहाँ टिके रहने के लिए जीवों को या तो रेत में बिल बनाकर छिपना पड़ता है
या बहुत तेज होना पड़ता है।
सही, यहाँ के ज्यादातर रहस्य सतह के नीचे दबे हैं।
बिल बनाने वाले जीव कौन से हैं यहाँ?
जैसे मोल क्रैब है, जिसे कभी कभी सैंड फ्ली भी कह देते हैं। ये लहरों के साथ रेत में अंदर बाहर होता रहता है और अपने एंटीना से खाना छानता है।
अच्छा।
और छोटे छोटे कोकीना क्लैम ये हजारों लाखों की भीड़ में एक साथ रहते हैं, जैसे ही लहर आती है तेजी से रेत से बाहर निकलकर खाने लगते हैं और लहर जाते ही वापस रेत में।
कमाल है। और सतह पर क्या होता है?
सतह पर भी कम हलचल नहीं, घोस्ट क्रैब, भूतिया केकड़ा।
नाम ही डरावना है।
ये रात में शिकार करता है, रंग बिल्कुल रेत जैसा, और इतनी तेजी से दौड़ता है कि पलक झपकते ही गायब।
और वो पक्षी जो किनारे पर चोंच मारते रहते हैं,
सैंड पाइपर।
हाँ, वो भी
अपनी लंबी चोंच से गीली रेत में लगातार टटोलते रहते हैं, कीड़े और छोटे क्रस्टेशन ढूंढते हुए।
और वो स्ट्रैंड लाइन का क्या जिक्र था?
हाँ, ऊंची ज्वार के बाद किनारे पर जो कचरा छूट जाता है, सीपियां, समुद्री शैवाल, केकड़ों के खोल, बड़े घोंघों के अंडे के खोलों की लड़ियां, ये सब हमें समुद्र के अंदर के जीवन की कहानियां सुनाते हैं।
दिलचस्प। अब उन तटों की बात करते हैं जो जीवन ने बनाए हैं, कोरल रीफ्स।
जी हाँ, प्रवाल भित्तियां, जैसे फ्लोरिडा या दूसरे उष्णकटिबंधीय इलाकों में। ये विशाल संरचनाएं अरबों छोटे छोटे जानवरों, कोरल पॉलिप्स, ने हजारों सालों में बनाई हैं।
और इनमें वो शैवाल वाली बात भी है।
बिल्कुल, ज़ूक्सेंथेली, ये कोरल के ऊतकों के अंदर रहते हैं, एक अद्भुत सहजीवन। शैवाल सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं, कोरल को पोषण देते हैं और बदले में कोरल उन्हें रहने की सुरक्षित जगह
और रंग भी देते हैं।
हाँ, वही शैवाल कोरल को उनके चमकीले रंग भी देते हैं। ये रीफ्स पानी के नीचे बसे जटिल त्रिआयामी शहरों की तरह हैं, हजारों तरह की मछलियां, स्पंज, समुद्री पंखे
और शिकारी भी, बैराकूडा, मोरेल।
हाँ, यहीं पर जीवन का वो गहरा जुड़ाव दिखता है जिसकी बात कार्सन बार बार करती हैं। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है।
और जीवन से बना दूसरा किनारा मैंग्रोव।
हाँ, मैंग्रोव का जंगल, ये ऐसे पेड़ हैं जो खारे पानी में कीचड़ वाली जमीन पर उगने के लिए खास तौर पे अनुकूलित हैं।
उनकी जड़ें अजीब होती है ना?
हाँ, फैली हुई जड़ें जो सहारा देती हैं और हवा से ऑक्सीजन लेने में भी मदद करती हैं। और ये पेड़ मिट्टी और तलछट को फंसाकर धीरे धीरे जमीन भी बनाते हैं
और नर्सरी का काम भी करते हैं।
हाँ, अनगिनत मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों के बच्चों के लिए एक सुरक्षित नर्सरी। यहाँ आपको जड़ों पर चढ़ते हुए केकड़े और पत्तों पर रहने वाले घोंघे जैसे अनोखे जीव भी मिलेंगे। जमीन और समुद्र का एक अनूठा संगम।
वाह, तो इस पूरी यात्रा से, चाहे वो चट्टानी किनारा हो, रेतीला या जीवन निर्मित, कुछ गहरे विषय और संदेश उभर कर आते हैं।
बिल्कुल, शायद सबसे पहला और सबसे जरूरी है सभी जीवन की परस्पर संबद्धता,
इंटरकनेक्टेडनेस।
कोई भी जीव अकेला नहीं है,
सब एक जटिल जाल में बुने हुए हैं।
हाँ, खाने के लिए, सहारे के लिए या फिर प्रतिस्पर्धा में। हमने देखा कैसे कोरल और शैवाल साथ रहते हैं, कैसे रॉकवीड छोटे जीवों को पनाह देते हैं। ये एक बड़ा सबक है।
और ये सोचकर शायद हम अपने शहर के पार्क या तालाब को भी अलग नजर से देख सकते हैं, वहां भी ऐसे कनेक्शंस होंगे।
जरूर होंगे। दूसरा बड़ा सबक है अनुकूलन और अस्तित्व के लिए संघर्ष का। हर जीव जो उस मुश्किल किनारे पर टिका हुआ है, वो अनुकूलन का एक मास्टरपीस है।
बार्निकल का खोल, मसल का गोंद, घोस्ट क्रैब का छलावरण।
बिल्कुल, लहरों की मार, सूख जाने का खतरा, तापमान का उतार चढ़ाव, शिकारियों का डर, इन सब के बावजूद जीवन वहां न सिर्फ टिका रहता है बल्कि पनपता है। ये हमें मुश्किल हालात में डटे रहने की प्रेरणा दे सकता है।
तीसरा विषय, विशाल भूवैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय समय।
हाँ, कार्सन जब लाखों साल पुरानी चट्टानों या चांद सूरज की ताकत से चलने वाले ज्वार भाटी की बात करती हैं, तो उनके सामने एक छोटे से जीव का क्षणभंगुर जीवन बहुत छोटा लगता है।
इससे एक विनम्रता आती है, एक सही नजरिया मिलता है, शायद हमारी रोज की चिंताएं उतनी बड़ी नहीं है।
बिल्कुल। चौथा संदेश है धैर्य से अवलोकन करने और आश्चर्य महसूस करने का महत्व।
हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। रुको, झुको, ध्यान से देखो।
हाँ, उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो हमारे अंदर उस आश्चर्य के भाव, उस सेंस ऑफ वंडर को फिर से जगाना चाहती हैं,
जो शायद दुनिया की भागदौड़ में कहीं खो गया है।
शायद ये हमें अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा गहराई से अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है।
पांचवा विषय है जीवन की जबरदस्त दृढ़ता और लचीलापन।
हाँ, सोचिए उन किनारों पर हालात कितने मुश्किल हैं, फिर भी जीवन वहां मौजूद है और सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि बहुतायत में है। लाइकन से लेकर प्रवाल भित्तियों तक हर जगह जीवन अपनी जगह बनाने और टिके रहने की जिद दिखाता है। ये एक बहुत आशावादी नजरिया है।
और छठा, वो संरक्षण वाली बात जो पूरी किताब में अंदर ही अंदर बहती रहती है।
सही कहा, जब आप किसी चीज को इतनी बारीकी से समझते हैं, उसकी सुंदरता और जटिलता को देखते हैं, तो उसके प्रति एक सम्मान और प्रेम का भाव जगता है और उसी से उसे बचाने की इच्छा पैदा होती है।
कार्सन सीधे उपदेश नहीं देती।
नहीं, लेकिन इस दुनिया की नाजुकता को दिखाकर वो हमें इसकी कद्र करने और इसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करती हैं। और आज के समय में ये संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, तटीय इलाकों पर बहुत दबाव है।
बिल्कुल,
कार्सन के लेखन में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे वो कहना कि किनारे को समझने के लिए
किनारे पर जाना ही होगा।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ना या देखना काफी नहीं, लहरों की आवाज सुनना, नमकीन हवा महसूस करना, प्रत्यक्ष अनुभव
और वो बदलाव और ठहराव का विरोधाभास।
हाँ, कि समुद्र का किनारा निरंतर प्रवाह की स्थिति में है, फिर भी उसमें स्थायित्व की भावना भी है।
लगातार बदलते रहने में भी एक तरह का संतुलन, एक चक्र है।
और ये पंक्ति हर उभरी हुई चट्टान में, हर घुमावदार समुद्र तट में, रेत के हर दाने में पृथ्वी की कहानी है।
कितनी खूबसूरत है ये छोटी सी चीज को धरती के अरबों साल के इतिहास से जोड़ देती है। हम एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है।
और आखिर में वो विचार जो आश्चर्य को संरक्षण से जोड़ता है। जितनी स्पष्टता से हम अपने चारों ओर के ब्रह्मांड के आश्चर्यों और वास्तविकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उतनी ही कम रुचि हमें विनाश में होगी।
बहुत शक्तिशाली है। जब हम प्रकृति की अद्भुत चीजों को सच में समझते और सराहते हैं, तो हम उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में कम सोचते हैं। शायद दुनिया को बचाने का रास्ता उसके आश्चर्य को फिर से खोजने से शुरू होता है।
इन विचारों का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है, जैसे बेहतर देखना सीखना।
हाँ, सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि ध्यान से। ये अवलोकन का कौशल सिर्फ प्रकृति में ही नहीं, कहीं भी काम आ सकता है, लोगों को समझने में, किसी समस्या को समझने में।
और पर्यावरण के प्रति नजरिया बदलना। अगली बार बीच पर जाएं तो उसे एक जीवित समुदाय के घर की तरह देखें।
बिल्कुल, तब शायद हम ज्यादा सावधानी से चलेंगे, वहां से जीवित चीजें उठाकर नहीं लाएंगे, कूड़ा नहीं फैलाएंगे। एक जिम्मेदारी का एहसास।
और ये तनाव कम करने में भी मदद कर सकता है, प्रकृति से जुड़ना।
जरूर, उसकी जटिलता और सुंदरता पर ध्यान देना आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के शोर से एक राहत दे सकता है, अपनी परेशानियों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करता है।
और प्रकृति की रणनीतियों से सीखना, बारनिकल का डटे रहना, केकड़े का ढल जाना, कोरल का मिलकर रहना।
हाँ, ये सब हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं।
मेरे लिए इस किताब से एक बड़ी सीख ये है कि दुनिया हमारी पहली नज़र में जितनी दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा गहरी, जटिल और चमत्कारों से भरी है। जीवन का वो छिपा हुआ घनत्व, वो सच में हैरान करने वाला है।
हाँ, और वो विशाल भूवैज्ञानिक समय का एहसास, वो हमारी चिंताओं को थोड़ा छोटा कर देता है।
और मेरे लिए शायद सबसे यादगार बात है वो धैर्यपूर्ण अवलोकन की शक्ति। कैसे रुककर ध्यान से देखने पर एक साधारण सी दिखने वाली जगह भी असाधारण कहानियों से भरी नजर आ सकती है।
और वो अंतर संबंध का विचार कि कैसे सब कुछ जुड़ा है, हर छोटा बड़ा जीव, लहरें, चट्टाने, सब एक अदृश्य धागे से। समुद्र का किनारा सचमुच पूरी पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है।
ये किताब वाकई हमारे देखने का तरीका बदल देती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।